रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, आज आप कुरान मजीद के सूरह माईदा की आयत क्रमांक 54, 55 और 56 की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी।
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
صدق الله العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دھرم سے پھرے گا وہ جان لے کہ اسے ایشور کو کوئی ہانی نہیں ہوگی، کیونکہ بھوشیہ میں ایشور ایسے لوگوں کو لائے گا جنہیں وہ پسند کرتا ہوگا اور وہ بھی ایشور کو پسند کرتے ہوں گے۔ وہ ایمان والوں کے سمکش نرم اور کافروں کے سمکش کڑے ہوں گے۔ وہ ایشور کے مارگ میں جہاد اور سنگھرش کریں گے تتھا کسی دھکار کرنے والے کی دھکار سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ایشور کی کرپا ہے جسے وہ جس کو چاہتا ہے پردان کرتا ہے، اور ایشور اتینت ویاپک گیان والا اور جانکار ہے۔ ہے ایمان والو، تمہارا ابھیبھاوک تتھا سوامی کیول ایشور، اس کا پیغمبر اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی استھتی میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو کوئی ایشور، اس کے پیغمبر تتھا ایسے ایمان والوں کی ابھیبھاوکتا اور سوامتو کو سویکار کرے تو جان لو کہ نسندیہ ایشور کا گٹھی پربھتو پراپت کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز. آج بدھوار ہے، مرداد کی 11، محرم کی 15 اور اگست کی 2 تاریخ. شروتاؤ، ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں. صدا کی بھانتی آپ سب سے پہلے دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ سنیں گے ساپتاہک کاریکرم آشا کی کرن، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل. شروتاؤ، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے. اور اب آپ ریڈیو تہران سے سماچار سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش. جنرل سلامی نے کہا ہے کہ جب تک جوانوں کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں دیش سرکشت ہے. ودیش منتری پاکستان کی یاترا پر روانہ ہو گئے ہیں. سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ موساد کا جاسوس پوتر قرآن کا انادر کر رہا ہے. بھارت کے ماڑی پور راج میں ہنسا کو لے کر وپکش کے 31 سانسدوں نے راشٹرپتی سے ملاقات کی اور گیاپن سونپا. اور اب آپ وستار سے محمد مہدی سے سماچار سنیے. اسلامی فورس سپاہ پاسداران کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے بو موسا دیپ میں نو سینک ابھیاس کے آرمبھ ہونے کے اوسر پر سینا کے جوانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ کی آنکھیں بیدار ہیں، آپ مضبوطی سے میدان میں موجود ہیں اور آپ کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں، تو ہمارے دیش کے لوگ آرام سے ہیں اور ہمارا دیش سرکشت ہے. سماچار ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے انوسار جنرل حسین سلامی نے کہا کہ مسلمانوں کی مکتی و کلیان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ہے، اور اسی کارن حضرت علی علیہ السلام سینکوں کو جن رکشا کی دیوار بتاتے ہیں. انہوں نے جہاد کو سورگ کا ایک دروازہ بتایا جسے اللہ کے وشیش بندوں کے لیے کھولا گیا ہے. اسی پرکار انہوں نے کہا کہ جہاد ایک راشٹر کی عزت کا وستر ہے، اور اگر کوئی راشٹر جہاد کے میدان کو جہاد کے میدان سے ہٹ جائے تو حضرت علی علیہ السلام کے کتنانوسار ایشور اسے اپمان کا وستر پہنائے گا، اور یہ ہر زمانے میں ہر پیڑھی کے لیے ہمیشہ رہنے والا سندیش ہے. نو سینا ابھیاس میں بھاگ لینے والے جوانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سوابھاوک روپ سے ہم اپنی سیماؤں کا بہت ادھک سمان کرتے ہیں. ہم جس طرح سے پڑوسی و مسلمان دیشوں کی سمپربھتا شانتی و سرکشا کا سمان کرتے ہیں، اسی طرح اپنی سیماؤں کی سرکشا کو اپنی جانوں سے ادھک مہتوپورن مانتے اور اس کا سمان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ شانتی و سرکشا کے دشا میں پریاسرت ہیں، اور یہ ہماری شیلی ہے، اور شانتی و سرکشا استھاپت کرنے کے لیے دنیا نے ایران کے جہاد و پریاس کو دیکھا ہے، اور ہم دنیا کے سمست مسلمانوں کو بھائی اور ایک جٹ سمجھتے ہیں. ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. پراپت سماچاروں کے انوسار ودیش منتری راجنیتک اور آرتھک پرتنیدھی منڈل کے ساتھ پاکستان کے اچادھیکاریوں سے بھیٹ وارتا کے ادیش سے اسلام آباد کی یاترا پر روانہ ہو گئے ہیں. ایران اور پاکستان کے سمبندھ بہت پرانے ہیں، اور دونوں دیشوں کے سمبندھ حالیہ ورش میں وبھن چھیتروں میں پرگتی کی دشا میں اگرسر رہے ہیں. پاکستان ایران کا ایک پڑوسی دیش ہے، اور عراق کے بعد پاکستان ایران کا دوسرا پڑوسی دیش ہے جس کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر لمبی سنیکت سیما ہے. اسلامی گنتنتر ایران کی سروچہ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو علی اکبر احمدیان نے کہا ہے کہ امریکہ سیریا میں اپنی اوائد اپستھتی کو لمبا کھینچنے کے لیے جان بوجھ کر نئے نئے سنکٹ پیدا کرنے کی سازشیں رچ رہا ہے۔ پراپت رپورٹ کے انوسار ایران کے دورے پر آئے سیریائی ودیش منتری فیصل المقداد کے ساتھ ایک ملاقات میں ایران کی سروچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو علی اکبر احمدیان نے سیریا اور پشچم ایشیا کے وبھن مدوں اور تازہ استھتی کے بارے میں چرچا کی۔ سیریا کی راجدھانی دمشق کے دکشی اپنگری علاقے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پوتر روزے کے پاس پچھلے گروار کو ہوئے آتنکی حملے کا ذکر کرتے ہوئے علی اکبر احمدیان نے کہا کہ یہ گھڑت حملہ ایک گمبھیر چتاونی دیتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دوارا سمرتھت آتنکوادی سموہ ایک بار پھر سے سیریا میں پیر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2011 میں اپنی شڈیانت کاری یوجنا کو لاگو کرنے میں وفل رہنے پر سیریا کے دشمن ایک بار پھر اس دیش میں راجنیتک چنوتی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ لبنان کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ کے مہا سچیو نے زانی شاسن کی گپچر سوا موساد کے جاسوسوں کے ہاتھوں پوتر قرآن کی انادر کی بھرتسنا کی ہے۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ موساد کا جاسوس سویڈش پولیس کے سمرتھن سے 2 عرب مسلمانوں کی مانیتا کا انادر کر رہا ہے۔ انہوں نے پوتر قرآن کی رکشا میں اسلامی دیشوں کے درشٹکوڑوں کو کمزور بتایا اور کہا کہ اس لانتی و اپرادھی نے سویڈن کی پولیس کے سمرتھن سے دوبارہ پوتر قرآن کو جلایا ہے، یہ شرمسار کرنے والا کرتیہ ہے اور 2 عرب مسلمانوں کی اپمان کا کارن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سویڈن، ڈنمارک اور پشچم کے نفاق و متھیاچار کا سامنا ہے۔ ہم نے اسلامی دیشوں کے سنگٹھن او آئی سی کی بیٹھک کو دیکھا، ہم نے او آئی سی کی اور سے ایک بیان کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اسی پرکار حزب اللہ کے مہا سچو نے کہا کہ اگر یہی افغان ایک بادشاہ، شاسک یا راجا کی پتنی اور کسی عرب سرکار کے پرمکھ کا ہوتا تو سب درشٹکوڑ اپناتے، بولتے اور کوئی خاموش نہ رہتا، پرنتو پوتر قرآن کو بارمبار جلایا گیا پرنتو ان شاسکوں و راجاؤں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہی ہیں۔ سویڈن میں لگاتار پوتر قرآن کا انادر کیے جانے کی گھٹناؤں کے بعد پوری دنیا سے آنے والی پرتکریا نے اس دیش کی سرکار پر کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سویڈش پردھان منتری نے کہا کہ اب وقت کی آزادی کے قانون میں بدلاؤ کرنے کی ان کی سرکار کی کوئی یوجنا نہیں ہے۔ سویڈن کے پردھان منتری نے کہا کہ دیش کے اب وقت کی سواتنترتا قانون کو بدلنے کی کوئی یوجنا نہیں ہے، جس میں پوتر قرآن کو جلانے اور کئی انیہ دھارمک اپمان شامل ہیں۔ ویسٹ بینک کے اتری شہر نابلس پر کٹرپنتھی اویدھ کالونی واسیوں اور آتنکی اسرائیلی سینکوں دوارا کیے گئے حملے کے بعد پرتیرودھک بل کے جیالوں اور آتنکی زیونی سینا کے بیچ بھیشن جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ آتنکی زانی شاسن اپنے شڈیانتکاری لکشوں کو پراپت کرنے کے لیے پرتدن فلسطین کے وبھن چھیتروں پر حملہ کرتا ہے۔ ان پاشوک حملوں میں آتنکی اسرائیلی سینا فلسطینیوں کو شہید کرتی ہے اور گھائل کرتی یا گرفتار کرتی ہے اور جیل بھیجتی ہے۔ اس کے جواب میں فلسطین کی جنتا اتکرمکاری شاسن کا پوری مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ پرتیرودھک بل کے جیالے اسرائیلی اپرادھوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اسی بیچ فلسطین کی شہاب نامک سماچار ایجنسی نے سوچنا دی ہے کہ بدھوار کی تڑکے اویدھ زانی کالونی واسیوں نے آتنکی اسرائیلی سینا کے سمرتھن سے نابلس شہر پر دھاوا بول دیا۔ بھارت کے منی پور راج میں ہنسا کو لے کر وپکش کے 31 سانسدوں نے راشٹرپتی سے ملاقات کی اور گیاپن سونپا۔ मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विपक्षी सांसदों की मांग है कि मणिपुर मामले में पीएम मोदी संसद में सवालों के जवाब दें। इससे पहले बुधवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में अपने कक्ष में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता शरद पवार के साथ बातचीत की। और अंत में समाचार की पोलैंड का कहना है कि बेलारूस के दो हेलीकॉप्टरों ने इसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। नाटो संगठन के सदस्य देश पोलैंड ने बेलारूस से सटी अपनी देश की पूर्वी सीमा पर सेना भेजी है। पोलैंड का कहना है कि बेलारूस के दो हेलीकॉप्टरों ने उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ट्रंप पर लगे कई आपराधिक आरोप, नूह में गुजरात की तर्ज पर मुसलमानों को सबक सिखाने का प्रयास और भारतीय संसद में मणिपुर हिंसा का मुद्दा, ये सारे विषय हमारी आज की चर्चा में शामिल रहेंगे। अमरीकी न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 नए आपराधिक आरोप तय किए हैं। न्यायालय ने ऐसे राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग को मंजूरी दे दी है जिसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने समर्थकों से कांग्रेस की इमारत पर हमला करवाया था। विस्तार से बता रहे हैं रविश जैदी।
साजिश, धोखाधड़ी, सुरक्षा से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार, ये वो चीजें हैं जो ट्रंप को जेल की ओर निमंत्रण दे रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपराधों की जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे हर दिन उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की राजधानी में स्थित इस देश के संघीय न्यायालय ने ट्रंप के 45 पेश के अभियोग को मंजूरी दे दी है और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ 4 नए आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। इस बार उन पर 2020 के अमरीकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनके द्वारा धांधली की साजिशें रचने का आरोप लगा है। इसी तरह ट्रंप पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने 6 जनवरी 2021 में अपने समर्थकों को अमरीकी कांग्रेस पर हमले के लिए उकसाया था। अमरीकी संचार माध्यम के सक्रिय टीकाकार ब्रायन टेलर कोहेन कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के संघीय न्यायालय ने एक ऐसे पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग की मंजूरी दी है कि जिसने अमरीकी राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, जिसने चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की है और जिसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने समर्थकों को कांग्रेस की इमारत पर हमले के लिए उकसाया है। एक पूर्व अमरीकी अधिकारी कहते हैं कि ट्रंप के मामलों की जांच कर रहे विशेष जांचकर्ता ने 6 जनवरी 2021 में ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमरीकी कांग्रेस पर किए गए हमले को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप के मुकदमे की जल्द से जल्द सुनवाई होते देखना चाहते हैं। पूर्व अमरीकी सैन्य अभियोजक ग्लेन क्रिश्नर का कहना है कि इस बार देश के संघीय न्यायालय ने ट्रंप के 45 पेज के अभियोग की जो फाइल खोली है उसमें उन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर इस पर सही से कार्रवाई हुई तो ट्रंप को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका कहना है कि अगर उन पर साजिश रचने का जो आरोप लगा है सिद्ध हो जाता है तो उन्हें 5 साल कैद की सजा हो सकती है। वहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। अमरीका की संघीय अदालत के फैसले के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि अभियोग के संबंध में ट्रंप के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई स्थानीय समय अनुसार गुरुवार शाम में, तेहरान के समय अनुसार शुक्रवार सुबह इस देश की राजधानी और ट्रंप की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। बता दें कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बीते 4 महीने में 3री बार क्रिमिनल चार्ज लगे हैं। न्यूयॉर्क से IRIB के संवाददाता अली रजबी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। भारत के हरियाणा राज्य के नूह में हिंसा के बाद कई स्थानों पर मुसलमानों की दुकानों और मुसलमानों के वाहनों के साथ ही साथ उनके घरों को भी आग लगाई गई। उपद्रव मचाने वाली भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। इस बारे में एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं सैयद मीसम।
हरियाणा के नूह में सोमवार को भयानक सांप्रदायिक हिंसा के बाद गुरुग्राम में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंसा के विरोध में चरमपंथी भगवा संगठन बजरंग दल ने बुधवार को पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। नूह में हिंसा के बाद मंगलवार को देर रात तक कई जगहों पर मुसलमानों की दुकानों, वाहनों और घरों को आग के हवाले करने के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए जाते रहे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मंगलवार रात गुरुग्राम के सेक्टर 70 में एक वेयरहाउस में आग लगा दी गई। रात में जिन दुकानों में आग लगाई गई थी बुधवार सुबह भी वहां से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता था। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को गुरुग्राम में मुसलमानों की कई दुकानों, वाहनों और रेस्तरानों को आग लगाई गई और तोड़फोड़ की गई। आगजनी करने और उपद्रव मचाने वाली भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। इस हिंसा का शिकार होने वालों में गुरुग्राम की सेक्टर 57 की मस्जिद के नायब इमाम साद भी शामिल थे। 31 जुलाई की रात भीड़ ने मस्जिद पर हमला किया और नायब इमाम साद की हत्या कर दी। इमाम साद के भाई शादाब अनवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साद को 1 अगस्त को ट्रेन से बिहार के सीतामढ़ी जाना था। अनवर ने अपने भाई साद से कहा कि अभी हालात सही नहीं है, इसलिए कुछ दिन रुक जाओ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में RPF के एक सिपाही ने मुस्लिम पहचान रखने वाले 3 यात्रियों को गोलियों से भून दिया था। अनवर रोते हुए कहते हैं कि भाई का आने और जाने का टिकट करवा दिया था, मगर मैंने ही कहा कि अभी मत जाओ, माहौल खराब है और तुम मस्जिद में ही रहो। साथ मस्जिद में ही थे और उपद्रव भीड़ की शक्ल में मौत मस्जिद तक पहुंच गई। 22 साल के साथ की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी और मस्जिद में आग लगा दी। दरअसल भगवा संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले भड़काऊ बयानों और वीडियो से स्पष्ट है कि इस तरह की हिंसा हत्या की पहले से ही योजना थी। बीजेपी और भगवा संगठनों से जुड़े कुछ नेताओं ने ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइटों पर हरियाणा में भी मुसलमानों को गुजरात जैसा सबक सिखाने की अपील की थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मणिपुर की तर्ज पर हरियाणा में भी सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। उनकी दुकानों, वाहनों और मस्जिदों को बिल्कुल उसी तरह से आग के हवाले किया गया है जिस तरह से मणिपुर में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की गई है। हरियाणा के दो मुस्लिम युवकों नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपी मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके सोमवार को नूह में आयोजित बजरंग दल और वीएचपी की जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था और दूसरे लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हरियाणा में सुनियोजित और प्रायोजित हिंसा हुई है और इस तरह से 2024 के आम चुनाव से पहले बहुसंख्यकों के वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है।
भारत की संसद में मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम केवल मणिपुर मुद्दे पर ही चर्चा चाहते हैं जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं। नई दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। विपक्ष के इस प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें मणिपुर की यात्रा करने वाले 21 सांसद भी उपस्थित थे, राष्ट्रपति को मणिपुर की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने मणिपुर की दयनीय स्थिति की राष्ट्रपति को विस्तृत जानकारी दी और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा, जिस पर राष्ट्रपति ने विचार करने का आश्वासन दिलाया है। उधर मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और कार्रवाइयां बाधित हुई। विपक्षी गठबंधन के सांसद मणिपुर के मुद्दे पर नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कराने और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा बयान दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर नियम 176 के अंतर्गत संक्षिप्त चर्चा कराने को तैयार है, जिसका उत्तर गृह मंत्री अमित शाह देंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है और इसे समाप्त करने का हर प्रयास विफल रहा है। विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के अंतर्गत चर्चा कराने के लिए अब तक 65 नोटिस दिए हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किए जाने पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की कार्रवाई से बहिर्गमन किया। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखर ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर बयान दे सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें आने का निर्देश नहीं दे सकता। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक पर पत्रकारों को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही हैं और उनके स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी संख्या में नोटिस मिलने पर भी उक्त नियम के तहत चर्चा नहीं की गई हो। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। तो अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण। दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि इस्माइलिया वो संप्रदाय है जिसने महामुक्तिदाता का झूठा दावा करने वालों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल को महामुक्तिदाता समझते थे, जबकि हजरत इस्माइल का निधन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जीवन में ही हो चुका था। किंतु कुछ लोगों और एक समूह का मानना था कि इमाम जमान अलैहिस्सलाम गायब और लोगों की नजरों से ओझल हैं, परंतु अंत में उसने उबैदुल्लाह महदी को महामुक्तिदाता मान लिया और कहा कि ये वही इमाम है जिसका वादा किया गया है। उत्तरी अफ्रीका भी उन क्षेत्रों में से है जहां झूठे महामुक्तिदाता का दावा करने वाले प्रकट हुए हैं। उबैदुल्लाह महदी उनमें सबसे मुख्य था और उसने फातिमिया नाम के बड़े श्रृंखला की बुनियाद रखी। उसने उस समय महामुक्तिदाता होने का दावा कर दिया जब इस्माइली संप्रदाय के प्रचारकों ने उसके मोरक्को में प्रवेश की भूमि प्रशस्त कर दी थी। उबैदुल्लाह ने अपने झूठे दावे को मजबूत बनाने के लिए महदिया नाम के शहर की बुनियाद भी रख दी, जबकि उसके उत्तराधिकारियों ने फातिमिया नाम की खिलाफत की बुनियाद रख दी और उन्होंने समूचे उत्तरी अफ्रीका और शाम पर नियंत्रण कर लिया और लगभग 280 साल तक उन्होंने शासन किया। जब यह सरकार अपनी कमजोरी के दौर से गुजर रही थी तो 515 हिजरी कमरी बराबर 1121 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुमर्त नाम के एक अन्य व्यक्ति ने महामुक्तिदाता होने का दावा कर दिया और वो मोहम्मदून नाम की सरकार के गठन की भूमि प्रशस्त कर दी। वो अपने झूठे दावे में इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने आदेश दिया कि उसके झंडे पर महदी खलीफे खुदा लिख दिया जाए। बहरहाल उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तरी अफ्रीका और स्पेन के उन भागों व क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जहां मुसलमान रहते थे और लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। उत्तरी अफ्रीका में महामुक्तिदाता होने का दावा करने वाला एक अन्य व्यक्ति अहमद बिन अब्दुल्ला है जो इब्ने महली के नाम से मशहूर है। वो सूफी पंथ का अनुयायी था और मोरक्को में बहुत से लोग उसके समर्थक बन गए थे। इब्ने महली ने लगभग 1000 हिजरी में स्वयं को महामुक्तिदाता कहा और कबीले के सरदारों से कहा कि वे पैगंबर की परंपरा पर अमल करें। बाद में उसने धीरे धीरे मोरक्को के नगरों पर कब्जा आरंभ कर दिया और जब कब्जा पूरा हो गया तो उसके बाद उसने सूफी पंथ को भी छोड़ दिया और 14 वर्षों तक इस देश का शासक रहा।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को
दोस्तों, एक अन्य सूफी मोरक्को के पूर्व शासक के उकसाने पर 1022 हिजरी कमरी में उसने जंग की। यद्यपि इस जंग में इब्ने महली हार गया और वो मारा गया, परंतु उसके अनुयायियों और समर्थकों का मानना था कि वो गायब हो गया है। मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल्लाह नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तरी अफ्रीका में महामुक्तिदाता का दावा करने वाला है और वो महदी सूदानी के नाम से मशहूर है। उसके समय में सूदान का संचालन उस्मानी साम्राज्य और मिस्री सेनाओं के माध्यम से होता था और निर्धनता, भ्रष्टाचार और भेदभाव सूडान में बहुत प्रचलित था। इस स्थिति में महदी सूडानी ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आंदोलन किया और 1289 हिजरी कमरी अर्थात 1881 ईस्वी में खुद को इमाम महदी कहा। वो अजीब गरीब दावे करता था और कहता था कि जागने की हालत में वो पैगंबर इस्लाम की सेवा में गया था और उनसे कुछ संदेश लाया है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे लोग काफिर हैं जो उसके इमाम महदी होने का इनकार करते हैं। महदी सूडानी इसी प्रकार उन सपनों और जागने की हालत में उन आवाजों से बातें करने का दावा भी करता था जिनमें उसके कथनानुसार इमाम महदी होने पर बल दिया गया होता था। बहरहाल वो सूडान के पीड़ित व अत्याचारग्रस्त लोगों के समर्थन से तुर्की और मिस्र की सेनाओं को हरा दिया और सूडान पर नियंत्रण कर लिया, पर इसके कुछ ही समय पश्चात ब्रितानी अतिक्रमणकारी महदी सूडानी से जंग करने के लिए आ गए, परंतु उसकी सेनाओं ने ब्रिटेन के अतिक्रमणकारी सैनिकों को भी पराजित कर दिया और जब ब्रितानी सैनिकों का कमांडर जनरल चार्ल्स मारा गया तो इस प्रकार की अफवाह फैला दी गई थी कि वो दज्जाल था जो मुक्तिदाता हजरत महदी से जंग करने के लिए आया था। अंततः 1302 हिजरी कमरी बराबर 1885 ईस्वी में महदी सूडानी का उस वक्त निधन हो गया जब वो एक सरकार के गठन की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि उत्तरी अफ्रीका वो जगह है जहां बहुत से लोगों ने महामुक्तिदाता का झूठा दावा किया और उनमें से कुछ बहुत सफल भी रहे। वहां के लोगों ने झूठा दावा करने वालों की जो बात मान ली और उनके दावों को स्वीकार कर लिया तो उसके कुछ कारण थे, जिनमें से एक ये था कि उत्तरी अफ्रीका में कबायली व्यवस्था थी और वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं थी, लोग इस्लामी शिक्षाओं पर उन्हें प्राथमिकता देते थे और बहुत से लोग सूफी मत का अनुसरण करते थे और लोग महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के विशेषताओं से अनभिज्ञ थे और वहां पर निर्धनता और भेदभाव प्रचलित था। 8वीं और 9वीं हिजरी कमरी में इब्ने फहद हिली नाम का एक शिया विद्वान व धर्म गुरु था। उसके कई शिष्य थे जिनमें से दो ने महामुक्तिदाता होने का दावा किया। जिस शिष्य ने महामुक्तिदाता होने का दावा किया उनमें से एक का नाम सैयद मोहम्मद फलाह मशअशी था और वो शिया विद्वान व धर्मगुरु इब्ने फहदिली का मुंह बोला बेटा था और कुछ समय के बाद वो सूफी पंथ का अनुयायी हो गया था। सबसे पहले उसने ये दावा किया कि वो इमाम महदी तक पहुंचने का जरिया है और उसके बाद लगभग 840 हिजरी कमरी में स्वयं को इमाम महदी होने का दावा कर दिया, जिसके तुरंत बाद उसके उस्ताद इब्ने फहद हिली ने कहा कि सैयद मोहम्मद फला काफिर हो गया है और उसकी हत्या को वैध करार दिया। परंतु सैयद मोहम्मद फला ने अपना कार्य जारी रखा और उसके कुछ विदित असामान्य कार्यों की वजह से लोगों का एक गुट उसका अनुयायी हो गया और उसने लोगों की मदद से इराक के कुछ भागों और इस तरह ईरान के खुजस्तान प्रांत पर कब्जा कर लिया। उसने मशअशी श्रृंखला की बुनियाद रखी और 70 वर्षों तक उसकी सरकार बाकी रही। इब्ने फहद हिली का एक अन्य शिष्य सैयद मोहम्मद नूर बख्श था। उसने भी अपना परिचय एक सूफी के रूप में किया। इसी प्रकार उसने लोगों को ये बताया कि वो विभिन्न कालों व क्षेत्रों के लोगों के इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता है। इसी प्रकार सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने दावा किया कि वो और उसके विशेष शिष्य कुछ स्वप्न देखते हैं और इन सपनों में ईश्वरीय दूतों यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम को भी देखते हैं और स्वयं ईश्वर और उसके दूतों ने उसे महामुक्तिदाता इमाम महदी कहा है। वर्तमान समय का जो ताजिकिस्तान है उसके दक्षिण में 826 हिजरी कमरी में इमाम महदी होने का झूठा दावा किया और साथ ही सरकार के गठन का प्रयास कर रहा था कि गिरफ्तार करके उसे दूर भेज दिया गया। सैयद मोहम्मद नूर बख्श को जब आज़ाद किया गया तो वो दोबारा अपने भ्रष्ट व गुमराह कार्यों व विचारों का प्रचार प्रसार करने लगा तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और विदित में उसने महामुक्तिदाता इमाम महदी होने का झूठा दावा वापस ले लिया, परंतु कुछ समय के बाद दोबारा उसने स्वयं को इमाम महदी होने का दावा किया, यहाँ तक कि 869 हिजरी कमरी में उसका निधन हो गया। सैयद नूर मोहम्मद नूरबख्श का निधन हुए अधिक समय नहीं गुजरा था कि भारत के उत्तर में सैयद मोहम्मद जौनपुरी नाम के एक अन्य सूफी ने इमाम महदी होने का दावा कर दिया और उसने 901 हिजरी कमरी में पवित्र नगर मक्का में अपने झूठे दावे की पुनरावृत्ति की और कहा, जो उसका अनुसरण करेगा वो मोमिन है और जो नहीं करेगा वो काफिर है। उसका झूठा दावा और प्रचार इस बात का कारण बना कि लोगों का एक गुट उसका अनुयायी हो गया, परंतु लोगों को गुमराह करने और सरकारी कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने के कारण उसे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढा जाने लगा और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो उत्तरी अफगानिस्तान भाग गया और लगभग 910 हिजरी कमरी में उसका निधन हो गया। जब इस्लामी क्षेत्रों में यूरोपीय साम्राज्यवादी विशेषकर ब्रितानी आ गए तो उनके समर्थन से कुछ व्यक्तियों ने दावा किया कि वे हजरत इमाम महदी हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का झूठा दावा किया उनमें से एक सैयद अली मोहम्मद बाप था, जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं था और शोहरत का भूखा था और उसने 1264 हिजरी कमरी बराबर 1848 में इमाम महदी होने का दावा किया और वो अपने दावे में इतना आगे बढ़ गया कि पैगंबर होने का भी दावा कर दिया। परंतु अली मोहम्मद जब समय के कुछ विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए हाजिर हुआ तो उसने दर्शा दिया कि उसे कोई विशेष जानकारी नहीं है और मजबूर होकर उसने प्रायश्चित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु शीघ्र ही उसने हस्ताक्षर पत्र की भी अनदेखी कर दी और ईरान में अपना प्रचार प्रसार करने लगा, यहाँ तक कि ईरान में अशांति का कारण बना और उसका सबसे अधिक लाभ ब्रिटिश साम्राज्यवादी उठा रहे थे। महामुक्तिदाता का झूठा करने वालों के इतिहास पर दृष्टि डालने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि महामुक्तिदाता के प्रकट होने की एक अलामत यह है कि उनका आंदोलन विश्वव्यापी होगा, किसी एक क्षेत्र से विशेष नहीं होगा। पूरी दुनिया में न्याय और शांति स्थापित होगी और हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके साथ होंगे। ये महामुक्तिदाता के प्रकट होने की कुछ महत्वपूर्ण अलामतें हैं जिन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और महामुक्तिदाता का झूठा दावा करने वालों की बातों पर विश्वास कर लिया। महामुक्तिदाता का झूठा दावा करने वालों ने लोगों की अनभिज्ञता का दुरुपयोग किया और कुछ ने अपना हित साधने के लिए अपना नाम ही महदी रख लिया और कुछ ने पैगम्बर इस्लाम के वंश से होने का दावा किया। महामुक्तिदाता का झूठा दावा करने वालों ने इस्लामी जगत के विभिन्न क्षेत्रों में दावा किया, परंतु सबको अंत में विफलता का सामना हुआ। यद्यपि कुछ समय तक उन्होंने कुछ लोगों को अपना अनुयायी व समर्थक बना लिया और इसी गुमराही में बहुत से लोग दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हम दुआ करते हैं कि हे हमारे पालनहार, समस्त मोमिनीन को महामुक्तिदाता इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हमें उन लोगों में करार दे जिनकी आंखों को महामुक्तिदाता के दर्शन से ठंडक मिली। हमें उनकी सेवा का अवसर प्रदान कर। हमें उस वक्त दुनिया से उठा जब हम उनके धर्म पर हों और हमारी गणना पड़ने के दिन उनके सच्चे चाहने वालों में हो। ये तेराना इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम आजकल।
आजकल दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम इसराइल के हमेशा युद्ध की स्थिति में रहने की वजह पर चर्चा करेंगे।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल के रूप में एक अवैध शासन मौजूद है। ये शासन जोर जबरदस्ती और अतिग्रहण की बुनियाद पर बना है। यही कारण है कि इस नकली शासन को बचाए रखने के लिए ज़ायनी शासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा और आतंकवादी संगठनों को संगठित किया है। एक सुसज्जित सेना का गठन हमेशा इस अवैध शासन की स्थापना करने वालों की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के समर्थन के तहत ज़ायनियों ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में सैन्य संरचना पर अधिक ध्यान दिया है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में विभिन्न सैन्य इकाइयों और विभागों के गठन में ज़ायनी शासन के लक्ष्यों के बारे में बात की थी। साथ ही हमने बताया था कि ज़ायनी क्षेत्र में गुणात्मक श्रेष्ठता हासिल करने और अपने अवैध कब्जे को स्थिर करने के लिए सेना और विभिन्न खुफिया इकाइयों का उपयोग करते हैं। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम ज़ायनी शासन की एक अन्य सैन्य इकाई पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। ये सैन्य इकाई इस शासन की राजनीतिक और सुरक्षा संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस शासन के आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने में उपयोगी है।
आज हम इसराइल की सारत मतकल सैन्य इकाई की बात करने जा रहे हैं। सारत मतकल इसराइली सुरक्षा बल की एक विशेष शासनकारी इकाई है। इसका मतलब होता है समरी एवं विशेष कार्य ग्रुप। सारत मतकल को वर्ष 1957 में अब्राहम ऑर्नान के प्रस्ताव से स्थापित किया गया था। इसका प्रारंभिक कोर कई पूर्व सैनिकों और अधिकारियों द्वारा बनाया गया था, जो 101वीं स्पेशल यूनिट और पैरा ट्रूपर्स यूनिट से बाहर के थे। सारत मतकल ने 1980 के दशक के मध्य तक अनौपचारिक रूप से काम किया था कि अगर वो लाल रेखाओं का घोर उल्लंघन करता है और आतंकवादी अभियान चलाता है तो ज़ायनी शासन के लिए चिंता का स्रोत न बने। बाद में ये इसराइली फोर्सेस कमांडों के एक अहम हिस्से के रूप में पहचानी जाने लगी। सारत मतकल एक विशेष ऑपरेशनल इकाई है जो गुप्त ऑपरेशन, जासूसी, आतंकवादी गतिविधि और अन्य विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित है। इसके सदस्यों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है और वे चुने गए और धार्मिक व्यक्तिगतता वाले होते हैं। ये इकाई अपनी अधिकांश जानकारी सीधे इसराइली सेना के संचालन के मुख्यालय से प्राप्त करती है और इसकी गतिविधियां पूरी तरह से गुप्त और गोपनीय होती हैं।
दोस्तों, आतंकी ज़ायनी सेना के जनरल स्टाफ की टोही इकाई की गतिविधि के क्षेत्र में बहुत विविध हैं, जिसमें प्रमुख फिलिस्तीनी कमांडरों के खिलाफ ऑपरेशन, अवैध अधिकृत क्षेत्रों के अंदर और बाहर फिलिस्तीनी अभियानों को बेअसर करना और विशेष रूप से खतरनाक और संवेदनशील ऑपरेशन करना जैसे परिचालन मिशन शामिल हैं। साथ ही जानकारी एकत्र करना इस इकाई के महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है। इस इकाई को सीधे सेना के संयुक्त स्टाफ से आदेश दिया जाता है और इसका उद्देश्य युद्धरत देशों के अंदर से खुफिया डेटा एकत्र करने के लिए खुफिया विभाग के साथ सहयोग करना है, जो आमतौर पर गजा और कुछ अरब देश इस इकाई के संचालन का गंतव्य हैं। इस इकाई के सदस्यों को कई क्षेत्रों में इसराइली सेना का सबसे अनुभवी और सशक्त कर्मी माना जाता है और इस इकाई में उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें इस शासन के प्रमुख पदों पर रखा जाता है, खासकर सुरक्षा सेवाओं में। इसराइली सेना की टोही इकाई के पूर्व सदस्यों में से दो लोगों ने ज़ायनी शासन के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। उनमें से एक बिन्यामिन नेतन्याहू और दूसरे एहूद बाराक हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मंत्री, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, मुसाद, जासूसी सेवा और ज़ायनी शासन के कई अन्य पूर्व और वर्तमान अधिकारी जैसे शाउल मुफाज, मोशे यालोन, अमीराम लेविन, नखमिया तमारी, दानी यतोम, ओजी दायान और शाई ओतिवाल इस इकाई में सक्रिय रह चुके हैं।
इसराइली सेना के जनरल स्टाफ की टोही इकाई के सदस्य सेना की गुप्त इकाइयों में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और उनके पास खुफिया और टोही के क्षेत्र में उच्च अनुभव और कौशल होता है। टोही इकाई के कुछ सदस्यों को ज़ायनी सेना के विशेष पैराट्रूपर्स में से चुना जाता है। जो लोग टोही इकाई का सदस्य बनने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं उन्हें पहले आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करना होता है। اس کا پاٹھیکرم ایک ورش اور آٹھ مہینے تک چلتا ہے اور اسے زائنی سینا میں سب سے کٹھن ویوسائک پرشکشن پاٹھیکرموں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ خفیہ بلوں کے پرشکشن میں اسرائیلی سینا کے زمینی بلوں کا وشیش پرشکشن شامل ہے، جہاں لوگوں کو جاسوسی اور ٹوہی ابھیانوں اور سلاکرتک مانچتروں، پارمپرک ہتھیاروں، وشیش ہتھیاروں اور انت پرودیوگیکی کے اپیوگ کے لیے پرشکشت کیا جاتا ہے۔ زائنی شاسن کی ٹوہی اکائی دوارا کیے گئے ادھکانش آتنکوادی ابھیانوں کو گپت ابھیانوں کی سوچی میں ورگیکرت کیا گیا ہے، جس میں ہم ان کچھ ابھیانوں پر چرچا کریں گے جو اس اکائی نے پچھلے دشکوں میں انجام دیے ہیں۔
آپریشن اسپرنگ آف یوتھ الفردان، اس آپریشن کے آدھار پر 10 اپریل 1973 کی رات کو سائرت متکل اکائی نے فلسطین مکتی سنگٹھن کے تین سب سے پرمکھ نیتاؤں جمال ناصر، جمال ادوان اور ابو یوسف النجار کی لبنان کی راجدھانی بیروت میں ہتیا کر دی تھی۔ ہتیا آپریشن خلیل وزیر ابو جہاد، شہید خلیل ابراہیم الوزیر، اپنام ابو جہاد، ایک فلسطینی راجنیتا اور سینیہ سدھانتکار کے روپ میں جانے جاتے تھے اور وہ فتح آندولن کے سنستھاپکوں میں سے ایک تھے اور اس سنگٹھن کے کیندریہ سمیتی کے سدسیہ تھے۔ اس کے علاوہ فتح کی سینیہ شاخہ الاسفہ کے کمانڈر۔ 1982 میں لبنان پر زائنی سینا کے حملے کے بعد وہ افریقی دیش ٹیونیشیا چلے گئے تھے، لیکن انتتہ 16 اپریل 1988 کو سائرت متکل نے بدنام زمانہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد، زائنی نوسینا اور وایو سینا کے سہیوگ سے ابو جہاد کو ٹیونیشیا میں ان کے گھر پر مارنے کا پریاس کیا۔ ابو جہاد کی ہتیا کرنے والی ٹیم نے ابو جہاد کو ان کی پتنی اور بچوں کے سامنے 60 سے ادھک گولیاں ماری اور انہیں شہید کر دیا۔ خلیل الوزیر کی ہتیا کے ابھیان کا نیتریتو تتکالین زائنی پردھان منتری اسحاق شامیر نے کیا تھا اور ایہود باراک خفیہ اکائی کی آتنکوادی ٹیم کے سنچالن کے پربھاری تھے۔
اسی طرح اس اکائی نے سال 1968 میں مصر میں نیل ندی پر کئی بجلی سنیتروں اور پلوں کو نصب کرنے کی سازش رچی۔ ورش 1972 میں سیریائی سرکشا سیوا کے 5 خفیہ ایجنٹوں کا اپہرن کیا۔ سال 1989 میں شیخ عبد الکریم عبید اور 1994 میں لبنان میں مصطفیٰ دیرانی کا اپہرن کیا۔ اس کے علاوہ لبنان اور کچھ انیہ کھیتروں میں بھی کئی انیہ آتنکوادی گتیویدھیوں اور نرسنہاروں میں اس اکائی کے شامل ہونے کے ثبوت ملتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ سائرت متکل ہمیشہ اپنی کارروائیوں میں سفل رہی ہے، بلکہ بہت سارے اس کے آپریشن بری طرح ناکام بھی ہوئے ہیں۔ سب سے مہتوپورن آپریشنوں میں سے ایک جس میں سائرت متکل موجود تھی اور وفل رہی، ادھارن کے طور پر آپریشن ایج آف دا سورڈ ہے۔ ورش 2019 میں قسام بریگیڈ نے ایک بڑی خفیہ پریوجنا کی وفلتا کی گھوشنا کی، جسے سائرت متکل انجام دینے کی یوجنا بنا رہا تھا۔ اس خفیہ یوجنا میں سینے اکائیں کو گازہ کے وبھن کھیتروں میں وبھن جاسوسی اپکرن لگانے تھے۔ اس ادیش کے لیے سائرت متکل نے غزہ میں کچھ واستوک پریواروں کے نام کے ساتھ کچھ آئی ڈی کارڈ بنائے اور ایک چیریٹی ایسوسی ایشن سے سمبندھت گاڑیوں کا اپیوگ کر کے اس یوجنا کو لاگو کرنے اور اس کی سرکشا نشچت کرنے کے لیے 15 لوگوں کو اس کام کو انجام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ استعمال کیے گئے اپکرنوں کو 2 ہفتے پہلے غزہ میں تسکری کر لایا گیا تھا، لیکن قسام بریگیڈ نے چھپ کر بات کرنے والے اپکرنوں پر نظر رکھی اور انیہ لوگوں کے آنے کا انتظار کیا اور انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا۔
سال 2018 میں سیرت متکل اکائی کو خان یونس کے پورو میں ایک اور ہار کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب سیرت متکل بلوں کے کئی سدسیوں نے اس کھیتر میں گھسپیٹ کی تو حماس کے سرکشا گشتی دل نے ان کا پتہ لگا لیا اور دونوں پکشوں کے بیچ ایک سشستر سنگھرش ہوا۔ اس جھڑپ میں سیرت متکل اکائی کے سدسیوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن وہ اپنے پیچھے سوچناؤں کا خزانہ چھوڑ گئے۔ اس خزانے کا مطلب کئی الیکٹرانک اپکرن تھے جن کا اپیوگ اسرائیل کی اکائی کے سدسیہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ سنواد کرنے کے لیے کرتے تھے۔
ضبط کیے گئے اپکرنوں کو قسام بٹالین کے انجینئروں کو دیے جانے کے بعد وہ اس میں سے موجود کچھ ویڈیو کلپ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ویڈیو کلپ کے سامنے آنے کے بعد سیارت متکل کی کئی یوجناؤں سے پردہ اٹھا۔ ویڈیو میں کتھت آپریشنوں سے سمبندھت بہت ساری جانکاریاں تھی۔ اس کے علاوہ فلسطینی انجینئر بھی ان اپکرنوں کو ڈیکوڈ کرنے میں سفل رہے اور پرینام سوروپ ایک لمبی اودھی کے لیے سیارت متکل سے سمبندھت نیٹورکوں کی نگرانی کا موقع فلسطینی بلوں کے ہاتھوں لگ گیا۔ تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ شروتاؤ، ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم آج کل، اور اب سمے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ جنرل سلامی نے کہا ہے کہ جب تک جوانوں کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں دیش سرکشت ہے۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہین پاکستان کی یاترا پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سید حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ موساد کا جاسوس پوتر قرآن کا انادر کر رہا ہے۔ تو شوتو، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ شبھ کامناؤں کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، شبھ راتری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔